आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला दुएम बिन अल हुसैन के साथ अम्मान में वफ्द की सतह की बातचीत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के खिलाफ उर्दून के मजबूत मौकफ की सताइश की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत 3.2% की आलमी शरह नमू के बरक्स 8.2% की शरह नमू के साथ तरक्की करने वाली मईशत है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम दहशतगर्द हमले केस में 7 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। भारत की बेरोजगारी की शरह नवंबर के महीने में घटकर 4.7% हो गई है, जो कि अप्रैल से निचली तरीन शरह है। मुल्क साल 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत की फतेह की याद में आज विजय दिवस मना रहा है। और 19 साल से कम उम्र के एशिया कप क्रिकेट में आज सुबह दुबई में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अम्मान में भारत और उर्दून के दरमियान करीबी शराकतदारी की निशानदेही करते हुए उर्दून के शाह अब्दुल्ला दुएम बिन अल हुसैन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस पूरे होने का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के खिलाफ उर्दून के पुरअज़्म मौक़िफ़ की तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि भारत और उर्दून दहशतगर्दी से निमटने के लिए एक मुश्तरका लायहमल साझा करें।
इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे।
साल 2015 में अक्वामे मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपनी पहली बातचीत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाहमी तआवुन के दीगर शोबों के साथ इस शोबे में भी मजीद इजाफा होगा। उर्दून के शाह ने भी दहशतगर्दी से निमटने में भारत की कोशिशों के लिए उर्दून की पुरजोर हिमायत का इरादा किया। पेश है एक रिपोर्ट।
दोनों लीडरों ने तिजारत व सरमायाकारी, दिफा और सिक्योरिटी के अलावा काबिले तजदीद तवानाई, खादों और ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, अहम मादनियात, बुनियादी ढांचे, हिफ्जान सेहत व दवा साजी, तालीम, सियाहत और विरासत के साथ साथ आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत कसीर जहती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उर्दून भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती साझेदार है और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत 2.8 अरब डॉलर के बकदर है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उर्दून के डिजिटल अदायगी निज़ाम और भारत के यूनिफाइड अदायगी इंटरफेस के दरमियान इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। उर्दून भारत के लिए खादों, खुसूसन फॉस्फेट्स का अहम सप्लायर रहा है और दोनों मुल्कों की कंपनियां फॉस्फेटिक खादों की भारत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उर्दून में मजीद सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खित्ते में पायदार अमन के हुसूल की कोशिशों के लिए भारत की हिमायत का इरादा किया। दोनों लीडरों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल करने की अहमियत को दोहराते हुए इलाकाई तरक्की और आलमी उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में आज शाम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इथियोपिया के अपने हमनसब डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। आलमी खिते जुनूब में शराकत दारों की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज़्म की तौसीक करेगा, ताकि करीबी दोस्ताना ताल्लुकात मुस्तहकम किए जा सकें और बाहमी तआवुन में इजाफा हो सके। पेश है एक रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इथियोपिया के लिए यह पहला दौरा होगा, लेकिन इस माह ये अफ्रीकी बर आज़म के लिए दूसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म एबे अहमद अली के साथ मुज़ाकरात करेंगे, जिन्हें अदीस अबाबा में आलमी अहमियत के हामिल उमूर के तमाम पहलुओं पर नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया है, जो अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। 2023 में भारत की G20 की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 के एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया गया था। ये दौरा دونوں ملکوں کی مشترکہ عزم کی عکاسی کرے گا. عالمی خطے جنوب میں شراکت داروں کی حیثیت سے دوستی کو مستحکم کرنا اور باہمی تعاون میں اضافہ کرنا ہے. ایتھوپیا عالمی جنوب اور افریقی تناظر میں ایک اہم اور بھروسے مند شراکت دار ہے. وزیراعظم اپنے دو روزہ دورے کے دوران کئی اہم امور پر بات چیت کریں گے. توقع ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت بھارت سرکار سے سرمایہ کاری، زراعت، کانکنی، ڈیجیٹل، عوامی بنیادی ڈھانچہ، شمسی اتحاد اور سائبر سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کرے گی، جو بات چیت کے ایجنڈے میں اہم شعبے ہیں. اپنے دورے کے دوران دونوں رہنما علاقائی اور بین الاقوامی امور کا بھی جائزہ لیں گے. وزیراعظم نریندر مودی ایتھوپیا کی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے. ادیس ابابا سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
بھارت اور ایتھیوپیا کی تعلیم، ہنرمندی اور صلاحیت سازی کے شعبے میں شراکت داری کی ایک طویل تاریخ رہی ہے. بھارت مختلف اسکالرشپس کے ذریعے ایتھیوپیا کے طلبا اور پیشہور افراد کو اسکالرشپ اور تربیت کے مواقع فراہم کرتا رہا ہے. ایتھیوپیا میں بھارتی سفیر انل کمار رائے نے آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کئی صدور اور نائب صدور نے، جو ایتھیوپیا میں بھارتی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز یا رجسٹرارز کے عہدوں کے برابر ہیں، آئی سی سی آر اور دیگر حکومت کی اسپانسر والی اسکالرشپ اسکیموں کے تحت بھارت میں تعلیم حاصل کی ہے. بھارتی ہوں یا ایتھیوپیا کے شہری، دونوں وزیراعظم نریندر مودی کے دورے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں.
جہاں تک بات رہی سکشا کے چھیتر میں دونوں دیش کے سمبندھوں کا، تو ایک دور تھا جب پرائمری اسکول سے لے کر کے پوسٹ ڈاکٹرل تک جو انسٹرکٹرز تھے، ٹیچرز تھے، وہ بھارتی مول کے ہی تھے. لیکن سمے کے ساتھ ہم نے یہ اپنی جو اسکلس ہے ایتھوپینس کو ٹرانسفر کر دیا. نشچت طور سے سکشا ایک بہت ہی مہتوپورن چھیتر رہا ہے دونوں دیشوں کے سمبندھوں میں. اور اس کے مادھیم سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پردھان منتری جی کے آگمن میں ایتھوپین بھی ہم ہی جتنے اتسک ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنا نیتا بھی مانتے ہیں.
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت 3.2% کی عالمی شرح نمو کے برعکس 8.2% کی شرح نمو کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بن رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر عالمی ادارہ موجودہ مالی سال میں بھارت کے اقتصادی منظرنامے میں اضافے کے رجحان کی جانب اشارہ کر رہا ہے. وزیر خزانہ نے گزشتہ روز لوک سبھا میں مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ کے ضمنی مطالبات کے جواب میں یہ بات کہی. اپوزیشن کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت کے بارے میں منفی تبصرے پر جواب طلب کرنے پر اپوزیشن کی سرزنش کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے زور دیا کہ تین بڑی عالمی ایجنسیوں DBRS، S&P اور R&I نے بھارت کی ریٹنگ میں اضافہ کیا ہے اور اس طرح بھارت نے ناقدین کو غلط ثابت کیا ہے. اس کے بعد لوک سبھا نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے ضمنی مطالبات کے پہلے بیچ کو منظوری دے دی، جس کے تحت 1,32,000 کروڑ روپے کے مجموعی اضافی اخراجات کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری طلب کی گئی ہے. ایوان زیری نے تخصیص سے متعلق اپروپریشن بل 2025 کو بھی منظوری دے دی ہے. قومی جانچ ایجنسی NIA نے کل جموں میں NIA کی خصوصی عدالت میں 22 اپریل کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں ایک فرد جرم داخل کی ہے. ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے پاکستان میں قائم لشکر طیبہ اور اس کی حلیف جماعت دہشت گرد تنظیم کی حیثیت سے دا ریزسٹنس فرنٹ TRF سمیت اس کیس میں 7 ملزموں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے. NIA نے کہا کہ پاکستان کے پشت پناہی والے دہشت گردوں نے مذہب کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ہلاک کیا اور اس حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی شہری ہلاک ہوا. NIA نے اپنی چارج شیٹ میں کہا ہے کہ لشکر طیبہ کے سرغنہ حافظ سعید اور TRF کے سرغنہ حبیب اللہ ملک، جو ساجد جٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پہلگام میں بیسرن کے سبزار میں 22 اپریل کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے اور اسے انجام دینے میں ملوث تھے. چارج شیٹ میں تین پاکستانی دہشت گردوں، فیصل جٹ عرف سلمان سلیمان شاہ، حبیب طاہر عرف جبران اور حمزہ افغانی کی نشاندہی کی گئی، جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ہلاک کیا. جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں کل شام ایک مسلح جھڑپ کے دوران اسپیشل آپریشن گروپ کا ایک جوان شہید ہو گیا، جبکہ ایک دہشت گرد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. شہید جوان کی شناخت امجد پٹھان کے طور پر ہوئی ہے. گولی باری میں اسپیشل آپریشن گروپ کے دیگر دو جوان زخمی بھی ہوئے ہیں. بھارت میں بےروزگاری کی شرح نومبر کے مہینے میں گھٹ کر 4.7% ہو گئی ہے، جو کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد میں بےروزگاری کی اپریل سے نچلی ترین شرح ہے. شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت کے افرادی قوت اور بےروزگاری سے متعلق ماہانہ اعداد و شمار کے مطابق دیہی بےروزگاری گھٹ کر 3.9% اور شہری بےروزگاری گھٹ کر 6.5% ہو گئی ہے، جو کہ اس سال درج کی گئی سب سے کم شرح کے برابر ہے. یہ خبرنامہ आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का 7 रोजा दौरा करेंगी। कर्नाटक में सदर जमहूरिया आज मलावल्ली में आदि जगतगुरु श्री श्री सितवरेश्वर शिव योगी महास्वामी जी की 1066वीं जयंती तकरीबात का इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया कल तमिलनाडु जाएंगी, जहां वो गोल्डन टेम्पल विल्लोर का दर्शन और आरती करेंगी। बाद में वो सरमाए कयाम के लिए राष्ट्रपति निलयम, बोलारम और सिकंदराबाद पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मगरबी बंगाल यूनिवर्सिटी कवानीन तरमीमी बिल 2022 को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस बिल के तहत वजीर आला ममता बनर्जी को सभी रियासती यूनिवर्सिटियों का चांसलर बनाने की तजवीज पेश की गई थी। मौजूदा निजाम के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस सभी रियासती यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं। लोकसभा में गुज़िश्ता रोज पेश किया गया विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 मजीद जांच पड़ताल के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बिल को ऐवान में पेश किया था। अलबत्ता अपोजिशन के अराकीन ने बिल को पेश करने की मुखालफत की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के दौरान कई अराकीन पार्लियामेंट ने बिल पर वसी तर सलाह मशवरे के लिए जोर दिया था। जनाब रिजिजू ने कहा कि उन अराकीन पार्लियामेंट की दरख्वास्त पर गौर करते हुए हुकूमत ने वसी तर सलाह मशवरे के लिए इस बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला किया है। लोकसभा में न्यूक्लियाई तवानाई की पायदार अफजूदगी और तरक्की से मुतालिक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 कल पेश किया गया। न्यूक्लियाई तवानाई के वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया। मगरबी बंगाल में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी की मुहिम SIR के पहले मरहले के तहत वोटरों की फहरिस्तों का मुसविदा आज शाये किया जाएगा। कौम आज 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के लिए विजय दिवस की तकरीब मना रही है। इस दिन हर साल कौम उन बहादुरों की अजीम कुर्बानी को याद करती है जिनकी दास्तानें हर भारतीय को तहरीक देती हैं और कौमी अजमत का एक वसीला रही हैं। साल 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी फोर्सेज के सरबराह जनरल AA खान नियाजी ने अपनी 93,000 फौजों के साथ भारतीय फौज और मुक्ति वाहिनी पर मुश्तमिल इत्तेहादी फोर्सेस के सामने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले थे। इस जंग के खात्मे के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। बांग्लादेश आज यौम फतेह मनाएगा। ये दिन बांग्लादेश के लिए बेहद कीमती है क्योंकि आज ही के दिन बांग्लादेश साल 1971 में 9 महीने तवील खूनी जंग के बाद पाकिस्तानी कब्जे से आजाद हुआ था। 19 साल से कम उम्र की एशिया कप क्रिकेट में आज दुबई के 7 स्टेडियम में भारत अपने ग्रुप मरहले के तीसरे मैच में मलेशिया से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिन्दुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अपने 3 मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में उर्दून दौरे की खबर को सफे अव्वल पर शाये किया है। अखबार ने लिखा कि जनाब मोदी का यह दौरा भारत के लिए इंतहाई अहम है और इन ममालिक के साथ भारत के मजबूत तिजारती और इक्तिसादी रवाबित हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की UAE के नायब वजीर आजम अब्दुल्ला बिन जायद बिन नहयान से मुलाकात की खबर को सफे अव्वल पर जगह दी है। अखबार ने लिखा है कि इस मुलाकात से मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के हंगामा आराई के बावजूद जौहरी तवानाई के इस्तेमाल से मुतालिक अमन बिल 2020 पेश किया।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला दुएम बिन अल हुसैन के साथ अम्मान में वफ्द की सतह की बातचीत की। इस दौरान वजीर आजम ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के खिलाफ उर्दून के मजबूत मौकिफ की सताइश की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत 3.2% की आलमी शरह नमू के बरक्स 8.2% की शरह नमू के साथ तरक्की करने वाली मईशत है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम दहशतगर्द हमले केस में 7 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। भारत की बेरोजगारी की शरह नवंबर के महीने में घटकर 4.7% हो गई है, जो कि अप्रैल से निचली तरीन शरह है। और मुल्क साल 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत की फतेह की याद में आज विजय दिवस मना रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।